नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच रक्षा, अंतरिक्ष, ऊर्जा, सुपर कंप्यूटिंग और खाद्य सुरक्षा के क्षेत्रों में कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात भारत में एक सुपर कंप्यूटिंग क्लस्टर स्थापित करने पर सहमत हुए हैं।
व्यापार के मोर्चे पर 2022 में दोनों देशों के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर के बाद से द्विपक्षीय व्यापार $100 मिलियन को पार कर चुका है। इसे देखते हुए दोनों नेताओं ने महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाने का फैसला किया। दोनों देशों ने 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करके $200 बिलियन तक पहुँचाने का लक्ष्य रखा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की भी निंदा की है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि पोलैंड को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनानी चाहिए और भारत के पड़ोसी देशों में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने में मदद नहीं करनी चाहिए। पोलैंड के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री रदस्वाव सिकोर्स्की के साथ नई दिल्ली में बैठक के दौरान डॉ जयशंकर ने कहा कि हाल के समय में अमरीका और फ्रांस में उन्होंने यूक्रेन संघर्ष और उसके प्रभावों के बारे में भारत का दृष्टिकोण साझा किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने त्योहारों के दौरान हवाई यात्री किरायों में अत्यधिक वृद्धि पर चिंता व्यक्त की है। न्यायालय ने कहा कि हवाई किरायों में होने वाले अप्रत्याशित उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए वह हस्तक्षेप करेगा। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और संदीप मेहता की पीठ ने केंद्र सरकार और नागर विमानन महानिदेशालय से इस बारे में जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 23 फरवरी को होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को पश्चिम बंगाल में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य के दौरान तार्किक विसंगतियों की सूची में शामिल मतदाताओं के नाम प्रदर्शित करने का निर्देश दिया है। न्यायालय विशेष गहन पुनरीक्षण में मनमानी और प्रक्रियात्मक अनियमितताओं के आरोपों से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वर्ष 2025 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान 0.7 अंक बढ़ाकर 7.3% कर दिया है। विश्व आर्थिक आउटलुक अपडेट में IMF ने कहा है कि वृद्धि इस वित्तीय वर्ष की चौथी तिमाही में मजबूत गति को दर्शाती है। भारतीय नौसेना का जहाज INS दर्शनी आज 10 महीने के समुद्री अभियान लोकायन 26 पर रवाना होगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि ये जहाज 22,000 समुद्री मील से अधिक की दूरी तय करेगा और इस दौरान 13 देशों के 18 विदेशी बंदरगाहों का दौरा करेगा। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF वंदे मातरम तटीय साइक्लोथॉन 2026 का दूसरा संस्करण आयोजित कर रहा है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में CISF के उप महानिरीक्षक डॉ MG राघवेंद्र कुमार ने बताया कि साइक्लोथॉन सुरक्षित तट समृद्ध भारत की थीम पर आयोजित किया जा रहा है। यूरोपीय संघ के नेता गुरुवार को ब्रुसेल्स में ग्रीनलैंड से संबंधित अमेरिका की धमकियों पर चर्चा करने के लिए एक आपातकालीन शिखर सम्मेलन आयोजित करेंगे। यूरोपीय आयोग के प्रवक्ता ओलोफ गिल ने कहा कि शिखर सम्मेलन में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ग्रीनलैंड के अधिग्रहण की योजना का विरोध करने वाले देशों पर लगाए जाने वाले टैरिफ की धमकी के जवाब में संभावित जवाबी उपायों का आकलन किया जाएगा। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2026 का पहला चरण आज लद्दाख के लेह में शुरू होगा। इस प्रतियोगिता में 1,000 से अधिक महिला और पुरुष एथलीट, कोच और तकनीकी विशेषज्ञ भाग लेंगे। स्केटिंग और हॉकी दो आई स्पोर्ट्स में 472 एथलीट हिस्सा लेंगे। वहीं खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा कि खेलो इंडिया एथलीटों को शीतकालीन खेलों में प्रतिस्पर्धा करने और उत्कृष्टता प्राप्त करने का अवसर प्रदान करेंगे। महिला प्रीमियर लीग WPL क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने वडोदरा में गुजरात जायंट्स को 61 रनों से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 178 रन बनाए। आज दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच वडोदरा के BCA स्टेडियम में मुकाबला होगा। इसके साथ ये बुलेटिन समाप्त हुआ।